महाराज जी, ये पुस्तक, ये एक डॉक्टर है अभी आए थे, उनका प्रश्न है, मैं पहले जैन हूँ या पहले डॉक्टर हूँ?
ये नहीं, वो उनको बताओ, आपका सुधार हो, हम कुछ ठीक से सुनाई दे रहे हैं, आवाज सुधार करें थोड़ा, आपके माइक का
हेलो
ठीक नहीं आ रहा है,
कोई नहीं जाना,
उसका अपना नहीं, वही उसी का सुधार करना है। शल डाउन हो गया होगा।
हेलो हेलो, पहला प्रश्न है महाराज जी, इधर के एक पुस्तक के एक डॉक्टर है, उन पुस्तक के एक डॉक्टर साहब है इधर के, वो उनका प्रश्न है, मैं पहले जैन हूँ या पहले डॉक्टर हूँ? प्रश्न पूछने का कारण है कि मैं पहले जैन हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त धर्म के लिए निकालना पड़ेगा।
नहीं, डॉक्टर साहब तो चले गए, वो नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा।
वो आने के बाद पूछेंगे। दूसरा एक प्रश्न है, आज सुबह में जो आपने प्रवचन दिया उसमें सामयिक के बारे में था या सामयिक के बारे में?
क्या प्रसंग था और उस प्रसंग का स्पष्टीकरण प्रश्न में नहीं है। हाँ, क्या बोलो?
सामयिक और सामयिक।
सामयिक और सामयिक का अंतर तो उससे पहले भी बताया था, आज सुबह भी ये विषय आया था, तो सुबह जो विषय आया, सामयिक करना चाहिए, सामयिक करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा, ऐसा भी कहा कि सामयिक करना चाहिए, तो क्या सामयिक हो सकता है श्रावक को? ये प्रश्न, ये अभिप्राय यही हो सकता है उस प्रश्न का, पर सामयिक करना चाहिए यदि ऐसा कहा तो सामयिक का अभ्यास करना चाहिए, ये अर्थ ले लेना चाहिए, और सामयिक करना चाहिए यदि ऐसा कहा तो सामयिक तो होता ही है, उसको करना ही चाहिए, समय की पाबंदी को बना करके उतने समय के लिए पंच पापों के विकल्पों को त्याग कर अपने आत्मा का चिंतन करना या जाप देना, बाह्य पदार्थों के प्रति हर्ष विषाद से परे अपने परिणामों को रखना, यही सामयिक कहलाता है। समय को बांध करके उतने समय तक करना सामयिक है, और ऐसा कुछ कुछ समय के लिए जो थोड़ा थोड़ा ही समय सामयिक करते करते हम सामयिक शिक्षा, सामयिक संयम की ओर बढ़ सकते हैं, ये अभिप्राय है। सामयिक संयम का नाम है, और सामयिक सामयिक संयम के प्राप्ति के लिए शिक्षाव्रत है, सामयिक शिक्षाव्रत है और सामयिक संयम है, इतना अंतर है। हाँ, नहीं हो सकता है ना, सामयिक संयम के साथ, सामयिक संयम पंचम गुणस्थान में है भी कहाँ, नहीं है।
अगला प्रश्न है महाराज जी, एक बार द्रव्यलिंगी मुनि से मंदिर भगवान की प्रतिष्ठा हो जाने पर वह मूर्ति वंदनीय है क्या नहीं, फिर भी उसे दोबारा संस्कार करने कर सकते या नहीं?
किसके माध्यम से?
द्रव्यलिंगी मुनि से मंदिर भगवान की प्रतिष्ठा हो जाने पर वह मूर्ति
वंदनीय। ये सभी बातें ये सभी बातें प्रतिष्ठा की है, तीर्थंकर भगवान किसी से दीक्षा लेते
नहीं,
हम कौन दीक्षा देने वाले, सामान्य मुनि महाराज दीक्षा देंगे क्या तीर्थंकर भगवान को? पर यह है कि मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है, तीर्थंकर भगवान स्वयं दीक्षा लेते हैं, ये सब हम नाटक दिखाना चाहे तो मुनि को दीक्षा ही नहीं देनी पड़ेगी, पर गुणों का आरोप कौन करे ये प्रश्न उत्पन्न होता है। ये मूर्ति है साक्षात तो नहीं है, मूर्ति स्वयं संकल्पित नहीं हो सकती, इस कारण से किसी महाव्रती मुनि को ही ढूंढ लेना पंचकल्याणक के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ये आवश्यक भी होता है। कम से कम मुनि दिगंबर रहे ये आवश्यक है। वस्त्रधारी को मूर्ति को प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं रहती और ठीक भी नहीं है, जैसा कि आजकल होता है। कोई गृहस्थ ही वस्त्रधारी रह करके ही महाव्रतों का आरोप करता है तो अधिकार में तो बैठता नहीं है वो, असंयमी संयमी को कैसे दीक्षा देगा? वो तो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है और तीर्थंकर भगवंतों के गुणों को आरोपित करने जा रहे हैं, तो एक असंयमी के माध्यम से क्या युक्त है ऐसा करना? नहीं, ये तो है ही नहीं। गृहस्थ को तो देना ही नहीं चाहिए। अब हाँ नहीं, विवेक तो रखना चाहिए, चाहे प्रतिष्ठाचार्य हूँ चाहे कोई भी हूँ, विवेक के साथ ही करना चाहिए। वैसे तो प्रतिमा को यदि विधि पूर्वक आप प्रतिष्ठित करना चाहते हैं गुणारोपण करके, तो दिगंबर मुनि तो होना ही चाहिए, पर उसमें भी उत्कृष्टता ये है कि भावलिंगी मुनि महाराज हों तो और अच्छा है, पर साक्षात तीर्थंकर तो भावलिंगी मुनि महाराज से भी दीक्षा नहीं लेते, स्वयं दीक्षित होते हैं। इस अपेक्षा से देखें, इस भावना से, इस दृष्टि से यदि विचार करें तो जिन प्रतिमा के अंदर कोई भी व्रतारोपण कर ले क्या फर्क पड़ता है? वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वयं ही मूर्ति प्रतिष्ठित ना भी हो, ऐसा भी इसमें प्रतिष्ठा शास्त्रों में लिखा है, अप्रतिष्ठित मूर्ति उसकी वंदना करना अपन ने शुरू कर दिया, अप्रतिष्ठित है शुरू कर दिया, शुरू करके वंदना करते करते अगर उस प्रतिमा के लिए 100 वर्ष व्यतीत हुए हैं तो उस प्रतिमा के लिए पंच कल्याणक जरूरत ही नहीं। इसका मतलब सबकी भावनाएं उस प्रतिमा के साथ जुड़ी और उस प्रतिमा में गुणों को देखा, गुणों का स्मरण किया, तो अपने भावों के कारण से ये तीर्थंकर की प्रतिमा है, इसमें फलाने फलाने गुण हैं, 46 मूल गुण हैं, 5 महाव्रत हैं, 13 प्रकार का चारित्र है, इत्यादि इत्यादि भावना से जब हम दर्शन करते हैं, इस भावना से ही प्रतिमा प्रतिष्ठित मानी जाती है। दूसरी बात, अकृत्रिम चैतालय अनादिकाल से है, कभी उनका पंचकल्याणक हुआ है क्या? यदि कहते हैं हुआ है तो उससे पहले मूर्ति थी क्या? नहीं, हाँ अकृत्रिम नहीं कहलाएगा। फिर उन अकृत्रिम प्रतिमाओं का दर्शन देव लोग करते हैं, नंदीश्वर द्वीप में हैं, जम्बो द्वीप में भी हैं, ढाई द्वीप के अंदर अनेकों जगह अकृत्रिम चैत्यालय हैं, दिगंबर प्रतिमाएं हैं, जिन प्रतिमाएं इनका पंच कल्याणक किसी ने किया नहीं, पर अनादिकाल से वे वंदनीय पूजनीय माने जा रहे हैं, इसलिए इनका पंच कल्याणक जरूरत नहीं है। वैसा ही समझ लो, 100 साल प्राचीन प्रतिमा अगर अप्रतिष्ठित भी है और लोगों ने दर्शन किया है तो अकृत्रिम चैता प्रतिमा के समान, अकृत्रिम जिनबिंब के समान ये जिनबिंब भी वंदनीय है, ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं आती। जिन प्रतिमा तो जिन प्रतिमा है, वंदन करने वाला व्यक्ति उसको गुणवान मान लेता है तो गुणों की तो वंदना कर रहा है, पाषाण की कहाँ वंदना होती है। यदि आपके भावों में प्रतिमा गुणवान है, ऐसी परिकल्पना, ऐसी भावना जाग उठी और आपने श्रद्धा भक्ति पूर्वक वंदन किया, तो पाषाण की वंदना की कि गुणों की वंदना की? गुणों की वंदना की। तो गुण थे क्या वहां? नहीं थे, पर आपके मन में तो गुण थे ना। वो उन गुणों को उस मूर्ति में साकार बना करके यदि आप वंदना करते हैं तो कोई गलत नहीं है। पंच कल्याणक आदि कराना मूर्तियों के लिए एक ये औपचारिक बात है, धर्म प्रभावना की बात है, तीर्थंकरों के गुणों के गुणों की प्रभावना है, प्रभावना प्रसिद्धि के लिए ये गुण होते हैं उनमें, इसको दर्शाने के लिए हम पंच कल्याणक कराते हैं। हाँ ठीक है ना, जो भी दर्शक दर्शन करेगा प्रतिमा को देखकर, केवल प्रतिमा का दर्शन नहीं करता है वो, उस प्रतिमा में जिनेंद्र भगवान के गुणों का दर्शन करता है, गुणों को देखता है, पहले देख करके उनकी वंदना करता है। इसलिए देखते देखते और करते करते प्रतिमा भी पूजनी हो जाती है,
उसकी नित्य पूजा होनी चाहिए ना। नित्य पूजा होनी चाहिए उसकी फिर।
हाँ, यदि यही बात इधर सोचें कि ऐसा ही किसी श्रावक को देखते देखते उनमें मुनि के गुण की परिकल्पना करते कुरते यदि श्रावक की भी वंदना करे तो गलत क्या है? ऐसा नहीं सोचना। भगवान ने कहा असंजदम न वंदे। ज्ञान नहीं, भावलिंगी भी मालूम नहीं और द्रव्यलिंगी भी मालूम नहीं। यानी भावलिंगी का अर्थ ये लगाते होंगे हमारे भी मुनि बनने के भाव हैं, यही भावलिंग है
उनका
यही समझते होंगे। बहुत सामान्य ज्ञान है ना, अध्ययन तो किया नहीं, जैन दर्शन का गहरा ज्ञान तो होता नहीं अज्ञानी जीवों को। लोग आप लोग भी कहते हैं महाराज हमको दर्शन प्रतिमा दे दो, हम नित्य देव दर्शन करेंगे। दर्शन प्रतिमा का नाम नित्य देव दर्शन करना ही दर्शन प्रतिमा, तो इसमें अज्ञानता दिखाई दे रही कि नहीं? वैसा ही उनका कि हम भाव से मुनि हैं, यानी भावों में मुनि पद के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं और भावों में सदा यही हम विचार करते हैं कि हम मुनि हैं, हम मुनि हैं, दिगंबर मुनि हैं, भले ही वस्त्र ऊपर हैं पर दिगंबर मुनि हैं, ऐसे ही भाव भाते रहते हैं, इसलिए भावलिंगी हैं।
अगला प्रश्न है महाराज जी।
हाँ।
मंदिर में मिथ्याति घटना हो रही होगी।
हाँ।
तब बताने पर भी वो नहीं सुनते, तब सम्यक दृष्टि को क्या करना चाहिए?
बताने पर भी क्या नहीं सुनते?
वो लोग सुनते नहीं
क्या
मिथ्याति की घटना।
हाँ हाँ।
तब क्रिया मिथ्याति की करते है, तब सम्यक दृष्टि को क्या करना चाहिए तब उस टाइम?
जो सुनते नहीं उनको बहिरा आत्मा बहिरात्मा कहते हैं और जो सुनते हैं उनको अंतर आत्मा अंतरात्मा बोलते हैं, और जिनको जिनके कान बह रहे हो उनको सुनाते भी क्यों हो? ये गलती है, आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। वो सुन ही नहीं सकता, कान ही नहीं है अंतरंग कान से सुनाया जाता है, अंतरंग में दो कान होते हैं जो सुनने की इच्छा रखते हैं, और ऐसा आत्मा हमको भी तो कुछ सुनाओ आत्मकल्याण की बातें, ऐसा निवेदन करता है। निवेदन करने वाले जीव को अंतरात्मा समझकर उसका उपकार करना चाहिए। आप तो उल्टा काम कर रहे हैं। जो बहरा है सुन नहीं सकता और उसमें आप तेल डाल रहे हैं, अंदर तेल नहीं जा रहा है कान में और आप तेल डालना चाह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं सुनाना। जो सुनता नहीं जिनवानी को, उसको नहीं सुनाना। क्योंकि बहिरात्मपने को त्याग करने के भाव जब जागृत होते हैं तो अंतरंग के कान जागृत होते, उन कानों को सुनाया जाता है। जो अंतरात्मा बनने के सन्मुख अवस्था में जीव होता है, उस जीव को मंद कषायी जीव कहा है। उसकी अनंतानुबंधी कषाय की मंदता रहती है। मंद अनंतानुबंधी कषाय के काल में ही 5 लब्धियां उसको प्राप्त हो सकती हैं। उस काल में यदि आप सुनाएंगे तो सुनेगा भी। हमको बहरा कौन बनाता है? देखिए, बहरात्मा कौन बनाता है? अनंतानुबंधी कषाय की तीव्रता और मिथ्यात्व कर्म का तीव्रोदय, ये दोनों ही मिलकर के आत्मा को बहिरात्मा बनाते हैं। और बहिरात्मा जीव बाहरी बाहरी तो भटकता है, ये उसका अर्थ है, बहिर्भटकने वाला आत्मा बहिरात्मा। लेकिन जब बाहर भटकता है तो कषाय का तीव्रोदय रहता है। वह तीव्रोदय अंतरंग आत्मा के कानों को बहरा बनाता है, इसलिए वो किसी के बात को सुनने के लिए राजी नहीं होता। दो अर्थ हैं इसके, बहिरा आत्मा बहिरात्मा, बहिर आत्मा बहिरात्मा। ऐसा जबरदस्ती नहीं सुनाना, सुनने के लिए सन्मुख हो, योग्य हो, पात्रता को देख करके सुनाना चाहिए। अन्यथा वह तीव्र कषाय वाला सुनना यदि नहीं चाहता है तो आपके ऊपर टूट पड़ सकता है, धर्मात्मा के ऊपर उपसर्ग भी हो सकता है, जैसे अपने को हुआ था।
बराबर, वो डॉक्टर साहब आए अभी पुस्तक के।
अच्छा,
उनका प्रश्न है, मैं पहले जैन हूँ या पहले डॉक्टर हूँ? प्रश्न पूछने का कारण यह है कि मैं पहले जैन हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय धर्म के लिए निकालना चाहिए, और मैं डॉक्टर हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा समय रुग्णों के सेवा के लिए निकालना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए पहले?
सवाल ये नहीं है कि मैं पहला जैन हूँ या डॉक्टर हूँ, आप दोनों हैं। डॉक्टर का जो व्यवसाय है वह जीवनोपाय आपका होता है। ये व्यवसाय के बिना भी आपका जीवन नहीं चल सकता। व्यवसाय साधन है जीवन जीने के लिए। 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते, धर्म पुरुषार्थ, इसके पश्चात अर्थ पुरुषार्थ, इसके पश्चात काम पुरुषार्थ और इसके पश्चात मोक्ष पुरुषार्थ। व्यक्ति को अर्थ पुरुषार्थी पहला बनना चाहिए कि धर्म पुरुषार्थी पहला बनना चाहिए? धर्म पुरुषार्थी बनना। और धर्म पुरुषार्थी बनने के लिए अर्थ की जरूरत नहीं होती। सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय कभी पैसा देना पड़ता है क्या? लब्धि के काल में, पंचलब्धि के काल में नोट गिनना पड़ता है, ये 5 लब्धि के बाद जो सम्यक दर्शन होना है कितना रुपए देना पड़ेगा? अर्थ की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर सत्य तत्वों के प्रति आस्था की जरूरत होती है। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र और सत्य तत्व, समीचीन तत्व पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन धर्म है। इसके लिए पैसा लगता है क्या? नहीं लगता है। इसलिए 4 पुरुषार्थों में से प्रथम पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ रखा है, पैसा नहीं लगता इसलिए। अब इसके पश्चात आपको पैसा भी लगेगा यदि श्रावक हैं तो, मुनि हैं तो नहीं, यदि श्रावक हैं तो। धर्म की रक्षा के लिए अर्थ चाहिए, क्योंकि धर्म शरीर के आश्रय से टिकता है और शरीर अन्न के आश्रय से टिकता है। अन्न के लिए अर्थ चाहिए, नहीं चाहिए? अन्न के लिए अर्थ चाहिए। तो अन्न किसके, पैसा किसके लिए? अन्न के लिए। अन्न किसके लिए? शरीर के लिए। और शरीर किसके लिए? धर्म के लिए, धर्म साधन के लिए। तो पहले आपको धर्म की जरूरत है जीवन में। धर्म पुरुषार्थ अपने जीवन में प्रधान है, और इसी की रक्षा के लिए यदि अर्थ की कमाई होती है तो धर्म में खर्च करने के लिए आपको अर्थ कमाना ही पड़ता है, क्योंकि यह गृहस्थ धर्म है। मुनि धर्म होता तो सीधा ही एक ही पुरुषार्थ रहता, अर्थ पुरुषार्थ शून्य है मुनि जीवन में। मुनि धर्म पुरुषार्थ पूर्वक सीधा ही मोक्ष पुरुषार्थ पर निकलते हैं, बीच के दो पुरुषार्थ उनके नहीं होते, काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ। गृहस्थों के चारों पुरुषार्थ होते हैं, तो गृहस्थ के जो चार पुरुषार्थ हैं उसमें यदि वह सम्यक दृष्टि बनता है, सम्यक ज्ञानी बनता है, प्रतिमाधारी बनता है, तो वह ग्रह त्यागी तो है नहीं, और गृहस्थी को चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए अर्थ पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। और कुल दीप को जला करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर काम पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। अगर आपको कुछ दीपक नहीं जलाना है तो काम पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, अर्थ पुरुषार्थ कर लिया। जब तक गृहस्थ अवस्था में रहना है उस अर्थ का सदुपयोग धर्म के क्षेत्र में किया और सीधा मुनि बनने के लिए चले गए, दिगंबर मुनि बन गए, धर्म पुरुषार्थ को पूर्णतः स्वीकार कर लिया और सीधा मोक्ष पुरुषार्थ पर निकल गए। काम पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो ये चार पुरुषार्थ का चिंतन भी करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि हम पहले डॉक्टर हैं क्या, पहले हम धर्मात्मा हैं। पहले तो आप धर्मात्मा हैं, ये व्यवसाय आपका धर्म का सहायक साधन है। धर्म के लिए अर्थ होना चाहिए या अर्थ के लिए धर्म करना चाहिए? हाँ, धर्म की रक्षा के लिए अर्थ होना चाहिए। जो जीव ऐसा करते हैं कि अर्थ के लिए धर्म करते हैं, ये अर्थ का विकास हो, अर्थ बढ़े, और इसलिए धर्म करने के लिए जाते हैं, तो क्या धर्म करते हैं? वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते। देखो, सम्यक दर्शन धर्म है ना। अर्थ के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त करो, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है और उससे ऑटोमेटिक अर्थ की उपलब्धि होती है। तो पुण्य और पुण्य के फल में अपेक्षा रख करके अर्थ की प्राप्ति के लिए, पुण्य के फल से जो मिल रहा है वो अर्थ है, पुण्य का फल अर्थ है, अर्थ की कामना को मन में धारण करते हुए यदि कोई धर्म पुरुषार्थ के निकलता है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहता है तो क्या वह व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकेगा? नहीं है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि अर्थ के लिए धर्म नहीं है, धर्म के लिए अर्थ है, और धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो अर्थ कमाएगा वो नियम से सम्यक दृष्टि बनेगा। और अर्थ के लिए यदि धर्म करने के लिए, धर्म का लाभ लेने के लिए जाता है तो वो धर्म का लाभ भी नहीं ले सकेगा, सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कामना पूर्वक धर्म की उत्पत्ति, धर्म का जन्म हो ही नहीं सकता। तो पहले अपन क्या है? पहले धर्मात्मा है, इसके पश्चात हम अर्थ पुरुषार्थी हैं, क्योंकि गृहस्थ होने से अर्थ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गृहस्थ हो और अर्थ ना हो ये भी अनर्थ है, गृहस्थ हो और अर्थ ना हो ये भी अनर्थ है। अर्थ पुरुषार्थ नियम से करना पड़ेगा, काम पुरुषार्थ करो या ना करो, पर अर्थ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। यदि नहीं करेगा तो आप देखिए क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। गृहस्थ हैं और अर्थ पुरुषार्थ नहीं करोगे तो धर्म की रक्षा करना ही असंभव होगा, स्वयं के धर्म की रक्षा भी नहीं होगी, और इस धरती पर जिसको रत्नत्रयधारी दिगंबर मुनि को पूर्ण धर्मात्मा कहा है उस धर्म तीर्थ की रक्षा भी आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अतिथि संविभाग कैसे करोगे? स्वयं भोजन कर रहे हैं, तो अतिथि को भी भोजन दे सकोगे, और स्वयं के भोजन के लिए अर्थ पुरुषार्थ की जरूरत है, और उस अर्थ से आपके धर्म की रक्षा तो प्रथम होगी, सम्यक्तु की रक्षा, ज्ञान की रक्षा, और संयम की भावना है और संयम धारण करना चाहते हैं तो इसी संयम धारण की उत्कृष्ट भावना से उस अतिथि की आप पूजा करते हैं। जब घर में आते हैं नवधा भक्ति करके आहार दान देते हैं, संयम भी मेरा जीवन में आए और मैं भी रत्नत्रयधारी बनूं, इस सद्भावना से हम अतिथि दान सत्पात्र दान देते हैं। तो गृहस्थ अर्थ की अर्थ पुरुषार्थ करता है, गृहस्थ अर्थ पुरुषार्थ करता है, इसलिए दोनों तीर्थ की रक्षा है, होती है, सम्यक्तु तीर्थ की भी रक्षा और रत्नत्रय तीर्थ की भी रक्षा, दोनों तीर्थ की रक्षा। सम्यक्तु भी तीर्थ है क्योंकि वह धर्म है, रत्नत्रय भी तीर्थ है क्योंकि वह भी धर्म है। रत्नत्रय मुनि के पास होता है और श्रावक के पास सम्यक्तु धर्म होता है, इन दोनों तीर्थों की रक्षा के लिए अर्थ पुरुषार्थ आवश्यक है ही। अगर गृहस्थ भी अर्थ पुरुषार्थ नहीं करेगा तो ये अनर्थ अवश्य होगा, मुनि धर्म भी नहीं टिकेगा और श्रावक धर्म भी नहीं टिकेगा। सेटिस्फाई? यस।
उनका ही प्रश्न आया है दूसरा,
हाँ
इस विषय में है।
ठीक।
डॉक्टर को एक पेशेंट सीरियस में है, एक पेशेंट सीरियस में है,
हाँ
उस समय वो डॉक्टर भगवान की पूजा में है, तो उस समय क्या करना चाहिए उसको? पेशेंट सीरियस है,
पेशेंट सीरियस है और
डॉक्टर पूजा कर रहे हैं।
अच्छा,
हाँ
भगवान कहते हैं मेरी पूजा की इतनी अनिवार्यता नहीं जितनी अनिवार्यता आप जीवों को बचाते हैं, जीवों और जीने दो। यह सूक्ति, यह सूत्र यदि आपके जीवन में जीवित है तो इससे बढ़कर की मेरी पूजा नहीं है। जब आप मेरी पूजा के लिए आते हो, इसीलिए आते कि आपने जीवो और जीने दो का, जीने दो के सूत्र को अपने जीवन में जीवंत कर लिया, आप इसलिए भगवान बन गए। और मैं जीवंत अभी नहीं कर सका इसलिए पूजा करने के लिए आया हूँ। पूजा करने का फल भगवान के पास हम क्या मांगते हैं और क्या निवेदन करते हैं? हे भगवान मेरे जीवन में भी जीवो और जीने दो, यह सूत्र साकार हो जाए, ऐसी भावना भाएंगी कि नहीं भाएंगी? तो मेरी पूजा करने के लिए क्यों आए हो? जाओ उसकी रक्षा करो, जो मरण कर रहा है संकट में है, संकट के संकट से उनको मुक्त कर दो, यही मेरी पूजा है और यही मेरा उपदेश का साकार अपने जीवन में करने का कर्तव्य है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो समझ में आ गए ना इस प्रश्न का सीधा उत्तर, क्या अनिवार्य है? हाँ, बीच में पूजा छोड़ करके भी आप जा सकते हैं। धन धनंजय कवि, हाँ वो नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा मालूम है ना? हाँ, सांप ने काट खाया था पुत्र को और उनके पास ये क्षमता थी, अगर पूजा छोड़ करके चले जाऊं तो सांप का विष वहां जाकर के मैं उतार नहीं सकूंगा, मेरे पास ये शक्ति है, योग्यता है कि मैं पूजा में मग्न हो जाऊं और मंत्रोच्चारण कर लूं, तो यहीं पर मंत्रोच्चारण करने का प्रभाव वहां पर पड़ सकता है, इसलिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और मरीज ठीक हो गया। यदि ऐसी ही क्षमता धनंजय जैसे अपने पास भी है तो पूजा फोड़ करके न जाए। तो स्वयं धनंजय बन जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन ठीक होना गारंटी होना चाहिए। धनंजय बन जाओ।
अगला प्रश्न है महाराज जी।
हाँ।
जो जीव क्षायक श्रमिक दृष्टि है और पहला सवनन है, यदि वह उपशम श्रेणी आरोहण करता है, क्या वह उसी भाव में क्षपक श्रेणी आरोहण कर सकता है? क्या
कर सकता है? क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो कर सकता है, यदि द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि है तो उसी भाव से आरोहण नहीं करता। क्षायिक सम्यक तो को बना करके कर सकता है, पर द्वितीयोपशम सम्यक के साथ क्षपक श्रेणी चढ़ना संभव नहीं है।
अगला प्रश्न है महाराज जी।
हाँ।
क्या देवों को मालूम होता है कि वो कौन से स्वर्ग में है?
देवों को मालूम होता है कि हम कौन से स्वर्ग में है, अवधि ज्ञान है, और उत्पत्ति के पश्चात भी वो सब कुछ समझ लेते हैं। अंतर्मुहूर्त के अंदर उनको पर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान होता है, उस समय उनको ज्ञात हो जाता है कि हम किस स्वर्ग में जन्मे हैं।
अगला प्रश्न है महाराज जी। विद्याधर मनुष्य किन परिणामों से बनते हैं?
विद्याधर मनुष्य
किन परिणामों से बनते हैं?
किन परिणामों से बनते हैं? विद्याधर मनुष्य, विद्याधर वो कहलाते हैं जो विजयार्थ पर्वत की पर्वत हैं, उनकी श्रेणियों में नगर बसे हुए हैं। वहाँ अगर किसी भव्यात्मा का जन्म हुआ तो उस मनुष्य को हम विद्याधर मनुष्य कहते हैं। इनका व्यवसाय विद्या है, विद्या सिद्ध करना, विद्या ही व्यवसाय है जिनका, वह वे विद्याधर हैं। ये विद्याओं को प्राप्त करते हैं मंत्र शक्ति के बल पर, सिद्धि के बल पर। विद्याएं परिग्रह की कोटि में आती हैं, रिद्धियां भी एक शक्तियां हैं, परंतु ये तपोशक्ति से प्रकट होती रिद्धियां। रिद्धियां तपोबल पर, तपोशक्ति से प्रकट होती हैं, और विद्याएं साधना के बल पर, मंत्र आदि साधना के बल पर प्राप्त किए जाते हैं। इसके पीछे कोई देव भी रहता है, वह अपनी शक्ति का सहयोग देता है। जब भी आप याद करते हैं तो आकाश गामिनी विद्या का मतलब आकाश में चलने के लिए उस देव का स्मरण करना पड़ेगा, और वह आकर के आपको आकाश मार्ग से ले जाएगा। इसको आकाश गामिनी विद्या कहते हैं। मुनि महाराज भी आकाश मार्ग से चलते हैं, जिनको आकाश गामिनी रिद्धि कहते हैं, आकाश रिद्धि कहते हैं। तो यह विद्या नहीं है, रिद्धियां परिग्रह की कोटि में नहीं आती। विद्याएं सभी के सभी परिग्रह हैं। इन विद्याधरों को, इन विद्याओं को त्याग करके परिग्रह समझकर त्यागते हैं। ये विद्याओं को रखना पाप है, परिग्रह युक्त है, मूर्छा भाव है, स्वामित्व होता है इन विद्याओं के प्रति। इन विद्याओं को किसी को दे भी सकते हैं और किसी से हम ले भी सकते हैं, आदान प्रदान हो सकता है, क्योंकि ये परिग्रह हैं। परंतु रिद्धियों को, रिद्धियों का आदान प्रदान नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको प्राप्त हो गई वह तपोशक्ति से प्रकट होती हैं, उनका आदान प्रदान संभव नहीं है। क्या प्रश्न था?
विद्याधर मनुष्य किन परिणामों से बनते हैं?
किन परिणामों से बनते हैं? हाँ, मनुष्यायु के बंद के काल में जो भी आवश्यक परिणाम वहाँ चाहिए, उन परिणामों से विद्याधर मनुष्य बन करके जन्म ले सकते हैं। जैसे कि किसी को उपकार करने के भाव हैं, किसी के प्रति उपकार करने के भाव हैं, और ये उपकार करना दूसरे के लिए हो रहा है ना, तो विद्याओं के माध्यम से स्वयं का भी उपकार होता है और पर का भी उपकार होता है। तो परोपकार के काल में हमने यदि ऐसा पुण्य का बंध किया है जिससे विद्याधर क्षेत्र में विद्याधर मनुष्य बनकर जन्म लेने लायक पुण्य बंधा हो, तो वह विद्याधर श्रेणी में जन्मेगा, परोपकार करने वाला व्यक्ति मंदकषायी। पर मनुष्य से मनुष्य बनने वाला जीव मिथ्यात्व के साथ ही बनता है, क्योंकि वह भी कर्मभूमि है और ये भी कर्मभूमि है। कर्मभूमि से कर्मभूमि में मनुष्य बनकर जन्म लेने वाला जीव मिथ्यात्व के साथ बनता है, और यह मिथ्या दृष्टि जीव मंदकषायी हो और सरल स्वभावी हो, मृदु स्वभावी हो, स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की मृदुता, कषाय की मंदता, मार्दव परिणाम, जीव को यदि होते हैं तो इस समय मनुष्य गति का बंध होता है, और यह व्यक्ति इस प्रकार का यदि परोपकार आदि में लग करके विशेष उपकार किया है किसी का, तो विद्याधर मनुष्य बन करके जन्म ले सकता है उपकार आदि भावों से। स्वर्ग से आकर के विद्याधर मनुष्य बन सकते हैं, वो भी मनुष्य गति है। हाँ, विजयार्ध श्रेणी में जन्म लेने वाले जीव स्वर्ग से भी आते हैं, नरक से भी आते हैं, त्रिरंच गति से भी आते हैं, और मनुष्य गति से मनुष्य गति की ओर भी आते हैं, चारों गति से वहाँ आते हैं। ऐसा नियम नहीं है। विद्याधर श्रेणियों में मिथ्या दृष्टि चारों गति के जीव भी जन्म लेते हैं और चारों गति के सम्यक दृष्टि जीव भी जन्म लेते हैं। कर्म भूमि है वो, मिथ्या दृष्टि जीव भी आते हैं और सम्यक दृष्टि भी। कर्म भूमि दोनों प्रकार के जीव आते हैं। हाँ, ये नियम है कि म्लेच्छ खंड में जन्म लेने वाले मनुष्य बनकर के या त्रिरंच बनकर के जन्म लेने वाले जो जीव रहते हैं वो नियम से मिथ्यात्व के साथ ही आते हैं। इसी प्रकार देवगति में भी नियम बनता है, भवनत्रिक में कोई आत्मा जाकर के जन्म ले रहा है तो वह दो ही गति से जाकर के जन्म लेता है, एक मनुष्य गति और एक त्रिरंच गति। इन दो गति से जाने वाले जीव भवनत्रिक में यदि जा रहे हैं तो नियम से प्रथम गुणस्थानवर्ती अथवा द्वितीय गुणस्थानवर्ती रहेंगे, सम्यक तो रहित तो ही रहेंगे।
अगला प्रश्न है महाराज जी,
और एक चीज और है, कुबो भूमि में जाने वाले जीव भी मरण के काल में नियम से मिथ्यात्व के साथ मरण करके ही कुबो भूमि में जन्म लेते हैं। सुबो भूमि में मिथ्या दृष्टि जीव भी जन्म लेते हैं और सम्यक दृष्टि जीव भी। इसी प्रकार देवगति में भी सम्यक दृष्टि भी लेते हैं और मिथ्या दृष्टि भी।
उनका गुणस्थान
किसका? विद्याधर श्रेणी में मनुष्यों को 1 से 14 गुणस्थान सभी हैं, सभी गुणस्थान है, वहां से मोक्ष भी होता है। भरत क्षेत्र के अंदर जो एक विजयार्थ पर्वत है वहाँ पर विद्याधर नगरियाँ हैं, वहाँ से निरंतर मोक्ष की प्राप्ति उन मनुष्यों को होता है। तो गुणस्थान उनके होते हैं 1 से 14 तक। एक चीज और, जैसे भवनत्रिक में जाने वाले त्रिरंच और मनुष्य नियम से प्रथम गुणस्थान में या द्वितीय गुणस्थान में मरण कर सम्यक तो रहित अवस्था में ही उस वहाँ पर जन्म लेते हैं, वैसा ही जन्म आज पंचम काल में यहाँ पर भी समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव यहाँ नहीं आते, ये भी भवनत्रिक के समान हो गया, कुबो भूमि के समान हो गया, म्लेच्छ खंड के समान हो गया, परंतु यहाँ जन्म लेने के पश्चात सम्यक दर्शन भी धारण कर सकते हैं, महाव्रत भी धारण कर सकते हैं, लेकिन म्लेच्छ खंड में जन्म लेने के बाद जन्म लेते समय मिथ्यात्व रहेगा, जन्म लेने के पश्चात भी मिथ्यात्व गुणस्थान जीवन भर रहेगा। कुबो भूमि में और भवनत्रिक में यहाँ अगर जन्म ले रहे हैं तो सम्यक जन्म लेते समय तो मिथ्यात्व ही रहेगा, जन्म के पश्चात ज़्यादा से ज़्यादा 4 गुणस्थान हो सकते हैं, 4th गुणस्थान प्राप्त हो सकता है, पंचम भी नहीं और 6th-7th भी नहीं। म्लेच्छ खंड का मनुष्य,
हाँ, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है,
उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, हाँ, मुनि भी बन सकते। पंचम काल में अनादि मिथ्या दृष्टि मत कहो, मिथ्या दृष्टि होते हैं। अनादि से क्या मतलब? ऐसा कुछ नियम नहीं, सादी मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं और अनादि मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि का जन्म होता है।
अगला प्रश्न है महाराज जी, दर्शन पौर में गाथा नंबर 25 का एक सूत्र है,
हाँ,
ये निर्ग्रंथ मुद्रा को देखकर जो गर्व करते हैं वे समय का तो रहित होते हैं, ये कैसे?
निर्ग्रंथ, हाँ ठीक, समझ में आ गया। निर्ग्रंथ मुद्रा को यथाजात मुद्रा को, निर्ग्रंथ मुद्रा यथाजात मुद्रा, मुद्रा को देखकर जो गर्व करते हैं यानी अभिमान करते यानी ऐसे परिणाम करते हैं कि ये क्या बड़े हम इनसे अच्छे हैं ऐसा यानी निर्ग्रंथ मुद्रा यानी भावलिंग वाली मुद्रा को देख करके भी जो आदर सत्कार इत्यादि नहीं कर पाते गर्व के कारण से यानी अहंकार के कारण से उनकी वंदना आदि नहीं कर पाते तो अज्ञानी हैं। अज्ञान के कारण से ये ऐसा होता है वो वंदना आदि नहीं कर पाते तो उसके लिए वो कहा है। क्या पूछा है?
निर्ग्रंथ मुद्रा को देखकर जो गर्व करते हैं हाँ। ये सम्यक तो रहित है।
सम्यक तो रहित होते ही हैं। गर्व इन्हें कि नमस्कार आदि करने के भाव नहीं आ रहे हैं नहीं। भावलिंग को समझ करके समझते तो है ही नहीं। वो समझ न होने के कारण मुनि महाराज सच्चे मुनि महाराज हैं इसका ज्ञान तो उनको है ही नहीं पर सबको समान समझते हैं। और यदि सच्चे को सच्चे समझ आ चुकी है और ज्ञान भी प्राप्त हो चुका है और फिर भी गर्व परिस्थिति वश वे नमन आदि नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं ऐसे जीव भी पाए जाते हैं। जैसे मिथ्यात्वस्था में आगम का ज्ञान हो सकता है कि नहीं? कितना हो सकता है? 11 अंग और 10 पूर्वी तक तो हो सकता है ना। तो उतना ज्ञान होने पर क्या भावलिंग क्या है और द्रव्यलिंग क्या है और असयम क्या है और संयम क्या है इसका क्या ज्ञान उनको नहीं रहता? रहता है। फिर भी वह वंदना आदि नहीं करता है दिगंबरत्व को देख करके। वंदना करने आदि का कार्य उनके मन में नहीं आते हैं तो उस जीव को मिथ्या दृष्टि जीव कहा गया है।
अगला प्रश्न है महाराज जी, किन किन परिणामों से जीव स्त्री पर्याय पाता है? विशेष तौर से पुरुष पर्याय से स्त्री पर्याय किन कारणों से मिलता है?
किन किन
कारणों से कारणों से स्त्री पर्याय मिलता है? विशेष तौर से पुरुष को स्त्री पर्याय किन परिणामों से मिलता है?
स्त्री पर्याय में कौन सी कषाय प्रधान होती है? अनुभव से कह रहे हैं कि वैसे कह रहे हैं? आगम में कहा है इसलिए हम कह रहे हैं। हम तो कभी मायाचारी नहीं करते। माया कषाय को त्याग करना स्त्री पर्याय में संभव नहीं है इसलिए आर्जव धर्म की उत्पत्ति स्त्री पर्याय में नहीं होती। पुरुष पर्याय में आर्जव भले ही असयमी हो परंतु पुरुष पर्याय मुनि व्रत ग्रहण करने के योग्य होने के कारण आर्जव धर्म को ग्रहण कर सकता है यानी माया कषाय पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए पुरुष कोई हो मायाचारी नहीं करता ऐसा नहीं। पुरुष भी छल कपट कर सकता है डाकू बन सकता है चोरी कर सकता है ये माया कषाय के बिना नहीं होता। यदि पुरुष माया कषाय में रत रहता है तो पुरुष स्त्री पर्याय में जाकर जन्म ले सकता है और स्त्री यदि मायाचारी नहीं करती है तो वो पुरुष पर्याय में जन्म लेती है। तो स्त्री पर्याय में उत्पत्ति के कारणीभूत कषाय कौन है ये तो स्पष्ट है माया कषाय। और पुरुष पर्याय में उत्पत्ति के लिए कारण कौन है तो वही कारण है माया कषाय का त्याग। अगर स्त्री माया कषाय पर कंट्रोल कर लेती है क्या बन करके, प्रतिमाधारी बन करके, आरिका बन करके सरल परिणाम हो सकते हैं कि नहीं? मायाचारी में कमी आ सकती है कि नहीं? आ सकती है। उस प्रकार से देखो, आरिका को वैसे स्त्री कहना ही ठीक नहीं, क्योंकि आरिका के परिणाम ऐसे रहते हैं, मुनि के पश्चात कोई विशुद्धि है मोक्ष मार्ग में तो आरिका की, तो ये विशुद्ध परिणाम क्या माया कषाय से सहित रहते हैं? माया कषाय से युक्त रहते हैं ये परिणाम नहीं? तो यही तो कारण है, आरिका मरण के पश्चात बाल पंडित मरण करके क्या स्त्री पर्याय में कोई आरिका ने जन्म लिया है? हैं? नहीं लिया है। इसका मतलब ये है, माया कषाय पर विजय करने का परिणाम ये हो गया, माया कषाय को कंट्रोल में रखने का परिणाम फल ये हो गया कि वो पुरुष पर्याय में जाकर के स्वर्ग में देव बनी, देवी के पर्याय में उसका जन्म नहीं हुआ। इसी का नाम स्त्री पर्याय का विच्छेद, यानी भविष्य में कभी स्त्री पर्याय में जन्म लेने का अवसर ही नहीं आएगा। हाँ, माया कषाय से त्रिरंच गति की प्राप्ति भी होती है, और त्रिरंच गति के योग्य जो माया कषाय होती है वो अलग क्वालिटी की है, तो उस क्वालिटी का करते हैं तो हम त्रिरंच गति में भी जन्म ले सकते हैं।
इधर स्त्री पर्याय की चर्चा है।
हाँ,
अगला अंतिम प्रश्न आपके पास है।
हाँ, ये श्लोक का अर्थ कल बताएंगे, वो 5 मिनट अधिक हो गया।
ठीक है,
वहाँ जाने में देर लगेगी।
ठीक ठीक,
गुरु भक्ति करेंगे।
ठीक ठीक,
नमस्तु अप्राणिक श्री आचार्य वंदनायाम सिद्ध भक्ति का उत्सर्गम करो मैं हम।